होता है उन्हें केवली कहते हैं। केवली सात प्रकार के होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करना हो तो कितने कर्मों को नाश करे? चार घाती कर्मों को नाश करे। ये घाती कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों को घातते हैं, इसलिए इनको घाती कर्म कहा है। कौन से गुणों को? अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण यानी जीव के स्वरूप के साथ रहने वाले जो गुण होते हैं वे अनुजीवी गुण। ये चार प्रकार के कौन कौन से? घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। इन चार घाती कर्मों में सबसे बलवान कौन सा है ये पता चल गया है, मोहनी है। मोहनी कर्म से ही ये संसार चल रहा है। चतुर्गति का भ्रमण जीव को मोहनी कर्म ही मूल में कारण है। कितना डेंजर है मोहनी कर्म, इसलिए मोहनी कर्म के संबंध में सुनते ही ऐसी भावना होती है कि बार बार इसी कर्म को सुने, कषाय के बारे में ही महाराज ज्यादा समझाएं। ऐसे जो परिणाम हो रहे हैं ये परिणाम भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पास भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव है, आप में कुछ बनने की होने की शक्ति है। अभवी जीव को ऐसा परिणाम नहीं हो सकता। अभवी जीव नहीं कह सकता कि मोहिनी कर्म के संबंध में बार बार प्रवचन करो, हम जरा सुनना चाहते हैं महाराज। अभवी जीव कह नहीं सकता, भव्य जीव ही कह सकता है। समूह शरण में जो उपदेश होता है अरहंत केवली भगवान, वो तो अनुभव से बोलते हैं क्योंकि उनके पास मोहनी कर्म है ही नहीं, और उस मोहनी कर्म को कैसे उन्होंने जीता? अरहंत पद पर जाने के लिए क्षपक श्रेणी चढ़ना पड़ता है, उपशम श्रेणी चढ़ने से काम चलता नहीं है। सारे सत्ता में रहते हैं, नीचे आते ही पुनः उदय में आ जाते हैं। श्रेणी दो प्रकार की होती है ना, उपशम और क्षपक। उपशम श्रेणी चढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कर्मों को दबा दबा करके हम ऊपर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। इन मोहनी कर्मों को जीतने के लिए हमारे पास बहुत प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। सब कुछ छोड़ चुके हैं जो मुनि महाराज, पंच पाप छूट गए हैं, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, अंतरंग 14 परिग्रह, ये सब छोड़ने के बाद भी उपशम श्रेणी चढ़ गए। तो मुनियों को भी मोहनी कर्म को जीतने के लिए शक्ति कम पड़ती है, ये सिद्ध होता है। और फिर गृहस्थों की तो बात ही अलग है। फिर भी सुनने के जो भाव हैं उन भावों की पूर्ति तो मुनि महाराज करते ही रहते हैं क्योंकि जो मुनि बनते हैं वो ग्रस्तों के बीच में से ही बनते हैं ना। तो मुनि महाराज को ये शुभ परिणाम रहते हैं, ये उपदेश सुन ले और कोई मोहनी कर्म को जीते या न जीते, वो क्षपक श्रेणी चढ़े या उपशम श्रेणी चढ़े, कोई भी श्रेणी चढ़ने दो, लेकिन कम से कम 24 को तो जीते, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग, इतना जीतना चाहिए। स्त्री पर्याय में भले ही जन्म हुआ हो, आर्यखंड मिला है, थोड़ा सा भी हम जिनवानी का अध्ययन करके मोहनी कर्म की ओर दृष्टिपात करके उनके स्वभावों के बारे में चिंतन करेंगे, मोहनी कर्म हमें किस प्रकार से घुमा रहा है, तो आपको वैराग्य की प्राप्ति हुए बिना नहीं रह सकती। स्त्री पर्याय में भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। जिनेंद्र भगवान ने आत्म कल्याण का उपदेश श्रावक धर्म में और मुनि धर्म में आत्म कल्याण का उपदेश दिया है। आत्म कल्याण करना है क्या नहीं करना, तो आत्म कल्याण स्त्री पर्याय में कैसे होता है सुन लो। सम्यक दर्शन के साथ देश संयम धारण करते हैं या उपचार महाव्रतों को धारण करते हैं तो आत्मा का कल्याण हो सकता है, और इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो न सम्यक दर्शन, न देश संयम, न प्रतिमा, कुछ भी नहीं करते हैं तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। पहले गुण स्थान में रह करके किसी का आत्म का कल्याण हुआ है क्या? दूसरे में रहकर, तीसरे में रहकर, तीन गुण स्थानों में आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्म कल्याण के श्रावक अवस्था में दो ही गुण स्थान हैं, एक चौथा है, एक पांचवा है। इनको सफल बनाना चाहिए। चौथा गुण स्थान अगर सफल है तो पांचवा गुण स्थान को पुरुषार्थ पूर्वक सफल बनाया जा सकता है। पर पहला कौन सा चाहिए? चौथा गुण स्थान चाहिए। चौथा गुण स्थान किसकी प्रधानता से होता है? कौन सा धर्म? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए? कितने दोषों से मुक्त होना चाहिए? 25 दोषों से। क्या ये 25 दोषों को थोड़ा बहुत पढ़ लिया? हमने बार बार कहा प्रवचन के दौरान 25 दोषों को पढ़ करके आना, और फिर बाद में हम डिटेल भी समझाएंगे। तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ एक मोटा भी है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है ना, सबके पास है वो। घर में एक जिनवाणी को रखने के लिए, शास्त्रों को संग्रह करने के लिए एक कपाट भी बनाना चाहिए। कैसा कपाट? एक लोहे का, लकड़ी का नहीं, लोहे का। दीवाल में कपाट बना करके शास्त्र रखेंगे तो बरसात के दिनों में उसमें दीमक लगते हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं। एक कपाट रखना चाहिए। करेंगे ना ये काम? खाने पीने के लिए, होटल में जाने के लिए 5 स्टार में हजारों हजारों का खर्च होता है। कभी गए थे कि नहीं 5 स्टार में? जीवन में गए ही नहीं। लोग बताते हैं वहां स्वर्ग की अनुभूति होती है, पता नहीं कैसे स्वर्ग है वो। एक होटल में जाने के बाद एक ने कहा कि वहां हम गए थे और एक कप चाय पी करके आने के लिए कितना? 500 रुपए कप। और एक रात रुक करके यदि आना हो तो 30,000 रुपए है, स्टैंडर्ड है। हाय पाय होटल भी हैं, तो ये हाय पाय होटल बने क्यों? हाय पाय लोग भी रहते हैं दुनिया में, इसलिए हाय पाय होटल भी बनते हैं। और वहां जा करके वे 30,000 खर्च करके आते हैं, फिर भी कुछ उनको लगता नहीं कि हमने कुछ खर्च किया, क्योंकि वो अरबपति हैं, करोड़पति हैं। उनको थोड़ा बहुत खर्च होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ किया है, और खुशी से आते हैं 30,000 दे करके। अब चाय देखो, एक रात को रुके भी, चाय भी पिया, भाषा नहीं मिला। हाई हाँ? हाई फाई लोग ऐसे आते हैं और 30,000 खर्च करने की एक शौक है, शौक के कारण से वहां गए हैं। और ये शौक क्यों है? क्योंकि ज्यादा धन है तो हम खर्च कहाँ करें, हम तो हाई फाई हैं, तो उनको भी हाई फाई स्थान ही चाहिए। तो हाई फाई होटल में जाते हैं, 30,000 खर्च करके आते हैं और घर में आने के बाद सामान्य लोगों से चर्चा होती है, हम होटल में गए 30,000 हो गया खर्च, फिर भी हमको कुछ नहीं लगता। सच बताते, यानी 30,000 का खर्च होने के बाद भी कुछ लगा नहीं, यानी हम कितने बड़े होंगे। वहां पर छोटा सा एक होटल भी था, वहां पर पासा मिल सकता था, भोजन जैसा भोजन मिल सकता था, चाय पीना तो चाय, 500 में पूरी बात हो जाती थी। चाय चाहे चाहे, देखो चाय में कोई क्वालिटी होती है, उसमें क्या सोना डाला जाता है कि चांदी डाला जाता है उबालते समय, वही चाय है। हाँ, चाय में कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन चाह की क्वालिटी है। हाय फाय वाले हाय पाए चाह करते हैं और वही चाय पीते हैं, घर आते हैं और गौरव महसूस करते हैं कि हमने 30,000 में चाय पिया एक रात रुक करके। तो चाय को कितने दिया? 500, रुकने के लिए 25,000। ये कोल्हापुर में भी बन रहा है एक होटल, इधर गए जाते थे रास्ता में। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, 30,000 खर्च करके हाई फाई कह करके घर नहीं आना, सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। देखो हाँ नहीं, जिसको सम्यक दर्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ और प्रयत्न कर रहे हैं वो भी ना जाए, ऐसा बता रहे। सम्यक दृष्टि तो जाएगा नहीं, सम्यक दृष्टि के लिए तो हाई फाई होटल से बढ़कर हाई फाई स्वर्ग ऊपर हैं, रिजर्व हैं, वो उधर जाना है, वहां पर रहना है। लेकिन यहां पर ही स्वर्ग की अनुभूति जो करता है, उन स्वर्गों की सीढ़ी पर जन्म लेना संभव नहीं। हमने यही स्वर्ग मना लिया, इंद्रिय विषयों को यहीं पर पूरा अनुभव कर लिया, तो इंद्रिय विषयों को अनुभव करते समय पापाश्रय होता है क्या? पुण्याश्रय? पापाश्रय। और इंद्रिय विषयों को कम करते हैं या उसका त्याग करते जाते हैं, त्याग करने से पुण्याश्रय होता है क्या? पापाश्रय। तो सम्यक दृष्टि संसार शरीर भोग निर्भिन्न, सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर और भोगों से विरक्त रहता है, वो कभी भी होटल में जा करके व्यर्थ खर्च करना, इंद्रिय विषयों मनोरंजन खर्च करने का भी एक शोक, सम्यक दृष्टि शोक करेगा नहीं, गलती से कर भी लिया तो शोक होता है उसको, शोक नहीं करेगा, पश्चाताप होता, मोहनी कर्म के वजह से क्या क्या होता है ये देख लो। 30,000 खर्च करके आए, ये किस कर्म के उदय में? पुण्य कर्म के उदय में। कौन सा पुण्य कर्म फिर बोलो? पाप कर्म का ही उदय है। मोहनी कर्म के उदय में वहीं जाने की इच्छा हो गई, ये मोहनी कर्म ही ले जा रहा है। कमाने में पाप, शोक करने में पाप, और खुशी खर्च करके आ गए, आकर के खुशी मनाया उसमें पाप, सब जगह पाप 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 पाप। ऐसा मोहनी कर्म हमें बहुत जाल में डाल देता है। एक कप चाय पीने के लिए भी चाह तो देखो किस प्रकार किस क्वालिटी की चाह है वो। चाय की कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन चाह की कितनी बड़ी क्वालिटी है। वो कहाँ ले गया हमको, वो 5 स्टार में, 5 स्टार में गए हो गए, 5 स्टार और हो गए ठार। जाते ही ठार हो गए, सम्यक दर्शन गया, धर्म गया, शुभ परिणाम गए, शुभाश्रव गया, पापाश्रव ही मिल गया। तो शुभाश्रव चला गया, ठार हो गया, पापाश्रव बढ़ गया, तो इससे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए हैं, बल्कि और पाप को आत्मा में भर करके घर ले आए। ये मोहिनी कर्म है। इस मोहिनी कर्म के वजह से जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है। इस मोहिनी कर्म के उदय में जो कर्मों का बंध होता है, एक समय में 8ों कर्मों का बंध हो सकता है, और निरंतर पूछो तो 7ों कर्मों का बंध है। ये घातिया कर्म है, आघाती भी हैं इसमें। तो यहाँ केवल ज्ञानी किसे कहते हैं, कहा है घाती कर्मों के अभाव से जिन्हें केवल ज्ञान होता है उन्हें केवली कहते हैं। केवली 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कौन कौन से? तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, अंतकृत केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अनुबद्ध केवली, समुद्घात केवली। ये 7 प्रकार की केवली। पहले नंबर के केवली कौन? सभी केवलियों में उच्च केवली, पुण्य की अपेक्षा से ज्यादा पुण्यवान जीव, तीर्थंकर जीव। तीर्थंकर भगवान सभी केवलियों में श्रेष्ठ केवली। इनकी क्या विशेषता? इनकी ये विशेषता है, अन्य केवलियों के तो देवों के द्वारा कल्याणक नहीं होते, और तीर्थंकर प्रकृति वाले को देवों के द्वारा 5 कल्याणक होते, ज्यादा से ज्यादा 5, कम से कम 2 या 3 ये कल्याणक होते। यानी यहाँ नहीं, यहाँ तो 5 ही होते हैं, विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से 2 या 3। 3 कैसे? देखो, विदेह क्षेत्र में कोई मनुष्य हैं और वे समोशरण में जा करके उपदेश सुन रहे हैं, और षोडश कारण भावना जैसे आप लोग शुरू रखे हैं ना अभी, भावना भावना, उस प्रकार तीर्थंकर के सानिध्य में सम्यक दृष्टि बनकर, क्षोभ्यम सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि या उपशम सम्यक दृष्टि बनकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना प्रारंभ किया। प्रारंभ कब किया? श्रावक अवस्था में ही किया। श्रावक अवस्था में प्रारंभ किया तो उसी भव से वे तीर्थंकर बन सकते, वहीं कर्मों को बांधा उसी भव में और उसी शरीर से वे तीर्थंकर बन सकते हैं। किंतु उनका संवनन कौन सा होना चाहिए? वज्र ऋषभ नाराज संवनन होना चाहिए। इनके लिए देव लोग ही कल्याणक मनाएंगे करेंगे। तो कितने कल्याणक होंगे? गृहस्थ अवस्था में यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो कितने कल्याणक मना सकते हैं? 3। कौन कौन से? दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तप कल्याणक और दीक्षा कल्याणक दोनों एक ही नाम वाले, ज्ञान कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक एक ही नाम है, निर्वाण कल्याणक और मोक्ष कल्याणक एक ही नाम है, अलग अलग नहीं। तो 3 कल्याणक कब होते हैं, किसको होते हैं? जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और फिर उसी शरीर से तीर्थंकर बन गए तो तीन कल्याणक होंगे। किंतु हमने बताया था शुरू में दर्शन विशुद्धि भावना के दिन कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले पात्र दो हैं, श्रमण और श्रावक। श्रमण भी कर सकते हैं और श्रावक भी कर सकता है। तो श्रावक का तो समझ में आता ही है कि जैसे राजा श्रेणिक ने श्रावक अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो श्रावक तो करता ही है, मुनि भी कर सकते हैं। जो मुनि पिछले भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया है, मुनि दीक्षा लेने के बाद वज्रषभ नारायण स्वर्णधारी हैं, मुनि अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। तो मुनि अवस्था में, विदेह क्षेत्र की बात है, मुनि अवस्था में किसी मुनि महाराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो उनके कितने कल्याणक बनेंगे? दो ही बनेंगे। कौन सा नहीं बन पाया? दीक्षा कल्याणक। क्यों नहीं बन पाया? दीक्षा पहले से ही लिया है तो फिर दीक्षा कल्याणक क्या? हाँ, दीक्षा लेने के बाद दीक्षा कल्याणक नहीं होता। ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, दो ही कल्याणक होंगे। इस प्रकार विधेय क्षेत्र में पांच कल्याणक भी हो सकते हैं, तीन कल्याणक भी हो सकते हैं, दो कल्याणक भी हो सकते हैं। पांच जिनको होंगे वो कहाँ से आएंगे? पूर्व भव से ही तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके जन्म लेंगे। जब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक दोनों होंगे, फिर तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, ये पांच हो सकते। विधेय क्षेत्र में तीन विकल्प हैं, पांच कल्याणक का होना, तीन कल्याणक का होना और दो कल्याणक का होना। भरत ऐरावत क्षेत्र में यहाँ विकल्प ही नहीं है, एक ही विकल्प है, पांच कल्याणक ही होंगे। क्योंकि इस भव में कोई भी तीर्थंकर बनकर तीर्थंकर के सानिध्य में तीर्थंकर नहीं बनते, नहीं बन सकते। कोई भी मुनि महाराज कहो या श्रावक कहो, वो यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे तो मुनि हो तो वो नियम से स्वर्ग ही जाएंगे, देव गति में ही जाएंगे। और श्रावक अवस्था में यदि बांधा है तो उनके लिए संभावना दोनों गति की बनती है। पहले से जिसने नरकायु का बंद किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो वो नरक से आकर के यहाँ तीर्थंकर बनेंगे। और जिसने देवायु का बंद करने के उपरांत, देवायु का बंद करने के उपरांत तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, फिर देवगति में गए, वहां से आकर यहाँ तीर्थंकर बने, तो तीर्थंकर बनने वाले जीव कितने गति से आते हैं? केवल दो ही गति से आते हैं। मनुष्य गति से आकर के तीर्थंकर नहीं बन सकते, उसी मनुष्य भव से, उसी शरीर से तीर्थंकर बनना संभव है बांध करके। किंतु मनुष्य पर्याय से कहीं दूसरी जगह से आकर कर्म भूमि में जन्म लेकर मनुष्य से मनुष्य बनकर तीर्थंकर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्या कारण है? तो देखो, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव मनुष्य गति में जाता ही नहीं, ये नियम है, मनुष्य गति में नहीं जाता। और जिसको मनुष्यायु का बंद हो गया है वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधता नहीं। इसी प्रकार जिसको तिर्यंच आयु का बंद हो गया है, तिर्यंच गति का बंद हो गया है, उसको हाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद ही नहीं होगा तो फिर तिर्यंच गति से आकर के कैसे तीर्थंकर बन सकते? नहीं बन सकते। इसलिए अब दूसरी बात है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कहाँ कर सकते हम? आर्य खंड में या म्लेच्छ खंड में या स्वर्ग में या नरक में? आर्य खंड में, कर्म भूमि में, और केवली के पाद मूल में, केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। तो बंद करने वाला मनुष्य, देखो बंद करने वाला मनुष्य यदि नरकायु के सत्ता वाला हो या देवायु के सत्ता वाला हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। यदि त्रिरंचायु का सत्ता वाला हो और मनुष्यायु का सत्ता वाला हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकता, ये नियम है, ये नियम है। इस नियम के अनुसार ही जीव तीर्थंकर बनते हैं, ये सिद्धांत है। तीर्थंकर केवली जिनके पंच कल्याणक होते हैं, जैसे भगवान महावीर भरत क्षेत्र के, सामान्य केवली जिनके पांच कल्याणक नहीं होते हैं, जैसे बाहुबली भगवान। कई लोग, सामान्य लोग ऐसे प्रश्न करते हैं जिनको आगम का कुछ भी ज्ञान नहीं, शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, तो वो ऐसे पूछते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, हमको कम से कम भी 1008 से भी ज़्यादा लोगों ने पूछा होगा ये पूछा कि महाराज आदिनाथ भगवान तो तीर्थंकर हैं और वो मोक्ष गए हैं, तीर्थंकर बन करके मोक्ष गए हैं, और बाहुबली भगवान को भी हम सुनते हैं कि वो भी मोक्ष गए हैं, तो फिर ये तीर्थंकर क्यों नहीं? तो कितना सामान्य प्रश्न है। तो मोक्ष जो जो जाते हैं वो सभी तीर्थंकर बनते ही हैं, ऐसा नियम है क्या? नहीं, तीर्थंकर अलग बात है और मोक्ष जाना अलग बात है। तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाना एक विशिष्ट पुण्य कर्म को बांधकर, एक ऐसा एक वह पद है जिस पद को पा करके मोक्ष जाना, ये बात अलग है। बिरले ही जीव ऐसे जाते हैं। पूरे ढाई द्वीप में तीर्थंकर बनने की जो संख्या है, सीट हैं, कितने हैं? 170 कर्म भूमि है, तो 170 कर्म भूमि में एक एक तीर्थंकर बन जाए तो 170 तीर्थंकर बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। किंतु ढाई द्वीप में मोक्ष जाने वाले केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं, तो केवली बनकर के ही मोक्ष जाते हैं ना? क्या केवली बने बिना मोक्ष होता है? घाती कर्म नष्ट किए, केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर मोक्ष गए, तो केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना तो मोक्ष होता नहीं है। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने वालों को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं करते हैं उनको भी केवल ज्ञान होता है, और तीर्थंकर प्रकृति को जो बंद करते हैं उनको भी केवल ज्ञान होता है, और वो दोनों ही मोक्ष जाते हैं। ये तो 170 हैं तीर्थंकर, तीर्थंकर पद वाले तो लिमिटेड हैं, किंतु केवल ज्ञानी कितने हैं? ढाई द्वीप में केवल ज्ञानियों की संख्या निकालेंगे, 13वें गुणस्थान वर्ती कितनी संख्या में रहते हैं, अधिक से अधिक उनकी भी संख्या है, लेकिन संख्यात की संख्या है, असंख्यात नहीं। ये कह सकते हैं 170 से ज्यादा तो हैं ही, कम नहीं है, संख्यात हैं। मोक्ष जाने वाले 170 से ज्यादा हो सकते हैं, परंतु तीर्थंकर बनने वाले 170 से ज्यादा नहीं बनते। अब सीट तो बहुत कम है, और कोल्हापुर में 200 लोग तीर्थंकर प्रकृति के भावना भा रहे हैं, सीट कम है, तो एक ही को एक एक सीट मिल जाए तो भी सबको नहीं मिलेगा। तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाने वाले, षोडश कारण भावना भाने वाले जीव सभी तीर्थंकर बनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बनने की आशा सबको सबको 200 बैठे हैं तो 200 को आशा नहीं क्या है? हाँ? भावना है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा आशा बिल्कुल नहीं है, और मिलने की गारंटी हो तो आशा भी है फिर। भावना है, कामना नहीं है, ये बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कोई अपेक्षा करने से नहीं होता। अपेक्षा को ही जो खत्म करते हैं और केवल कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य के द्वारा भावना भाते 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 चले जाते हैं, ये भावनाएं विशुद्धि को कम नहीं कर सकती। भावना हमारी विशुद्धि में विकास लाती, भावना, लेकिन कामना हमारी विशुद्धि में कमी लाती है। इसलिए भावना को पवित्र समझना चाहिए, कामना को अपवित्र कहना चाहिए। कामना से कभी भी हम कोई काम नहीं कर सकते परमार्थ क्षेत्र में। कामना से कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है कामना से, भावना से फायदा ही फायदा होता है। इसलिए सब जगह भावों के लिए और भावना के लिए, विशुद्धि के लिए महत्व दिया है। कितना महत्व है? बहुत महत्व है, भावना के लिए महत्व है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी आचार्य ने क्या लिखा? षोडश कारण भावनाओं के नाम लिखे और उनको तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बताया, भावनाओं को कारण बताया है। क्या 16 प्रकार की कामनाओं को लिखा? भावनाओं को लिखा। भावना क्या चीज है? भावना कर्तव्य पूर्वक होते हैं, कामना ऐसा नहीं किसी सिद्धि के लिए। हमारे पास आकुल व्याकुलता रहती है, इसको सिद्ध करना है, सिद्धि के लिए एक लक्ष्य बना करके चलता है कि ये मिलना ही चाहिए। जैसे निदान बंद आदि होता है वैसा, मुझे ये मिलना ही चाहिए, हमने ये तप किया, ये व्रत पालन किया और इन व्रतों के कारण, इस पूजा अनुष्ठान उपासना इत्यादि के कारण से मुझे जो पुण्य का बंध हुआ है, इस पुण्य के फल को मैं पालूं, मुझे पुण्य का फल मिले। क्या मिले? ये पुण्य का फल, जो इससे जो कुछ मिल सकता है वो मिले। तो क्या मिले? पुण्य का फल मोक्ष है क्या? पुण्य का फल केवल ज्ञान है क्या? पुण्य का फल है क्या? पुण्य फला अरिहंता, यानी पुण्य के फल से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा पुण्य कमा ले फिर? कौन सा पुण्य कमाने पर अरहंत पद की प्राप्ति होगी? जो अरहंत पद है वह पुण्य रूप है। जो अरहंत पद प्राप्त हुआ वहां पर पुण्य ही पुण्य है। ये अरहंत पद पापों को नाश करने से मिला या पुण्य करने से मिला? घाती कर्मों को नाश करने से मिला। तो घाती कर्म नाशो अरहंत पद, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं। जो केवल ज्ञान को रोकने वाले कर्म हैं उनको नाश करने से ही केवल ज्ञान यानी अरहंत पद प्राप्त होता है। देखो, एक जीव निगोद से निकलता और सीधा मनुष्य बनता है, मनुष्य बनकर के 8 साल अंतर मुहूर्त में ही अरहंत पद को प्राप्त कर सकता है। अब उसने पूर्व भव में कौन सा पुण्य किया? और यदि पुण्य किया तो उस पुण्य से सबको अरहंत पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? घाती कर्मों को नाश करने वालों को अरहंत पद मिला, या निगोद पर्याय में पुण्य प्रकृति को बांधने से यहाँ जन्म लेने से अरहंत पद मिला, घाती कर्म को नाश करने का परिणाम है, फल है कि अरहंत पद की प्राप्ति हो गई। निगोद से आया, मनुष्य बना और वे 8 साल अंतर मुहूर्त में घाती कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान पद को प्राप्त किया, ये अरहंत पद है। ये अरहंत पद सबको मिल सकता है, लेकिन क्या करने से? पुण्य करने से नहीं। यदि अपन कहते हैं कि पुण्य करने से, तो निगोद में जीव कौन सा पुण्य करके आया था? और 8 साल अंतर मुहूर्त तक कौन सा पुण्य उसने किया मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद? कोई पुण्य नहीं किया। पुण्य किया भी तो हम ये कह सकते हैं पापों को ही नाश करने के लिए वो जब चल पड़े तो सभी परिग्रहों को त्याग दिया। परिग्रह का त्याग ये शुभ भाव है। इन शुभ भावों से दीक्षा लेने के बाद, पंच पापों को त्याग करने के बाद पुण्याश्रव ही पुण्याश्रव हुआ, मुनि बनने के बाद हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मुनि बनने के बाद बहुत पुण्य कमाया, बहुत पुण्य का बंध होता है मुनियों को। मुनियों को जितना पुण्य का बंध होता है उतना पुण्य का बंध श्रावक कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक और पाप आता रहता है, एक और पुण्य कमाता रहता है, और वह भी मुनि के बराबर नहीं कमा सकता, थोड़ा बहुत कमा सकता है। तो ये इधर से थोड़ा बहुत कमा रहा है और इधर से पाप भी आ रहा है, यानी क्या हो गया? ये गज स्नानवत हो गया, पाप को रोक नहीं लगाया और पुण्य को बुला रहा है। तो जितना पुण्य इधर से आ रहा है उतना पाप भी आ रहा है, और दोनों बैलेंस जो है ना वो बराबर चल रहे हैं। हाँ, पुण्य किया है ना, मंदिर गए होंगे, देव दर्शन किया होगा निगोद में, सत्ता में पुण्य होगा, वो सत्ता में पुण्य कहाँ से आया? निगोद गए, जाने से पहले सत्ता में था। देखो ना, पुण्यवान जीव कैसे निगोद जाएगा? निगोद में, निगोद से निकला ही नहीं आज तक अनादिकाल से। हाँ, ऐसा जीव भी नित्य निगोद में रहने, नित्य निगोद ही कहलाता है वो, जो आज तक निगोद से बाहर नहीं आया, निगोद पर्याय से नित्य निगोदी है, वह जीव भी डायरेक्ट मनुष्य बन सकता है। तो उसने पुण्य किस पर्याय में कमाया पीछे? उसकी पर्याय तो निगोद ही निगोद, निगोद ही निगोद, अनंत काल का इतिहास निगोद का है। तो पुण्य कैसे कमाए? पुण्य कमाने का विशेष, जो जैसे देखो अपन लोग पुण्य कमाते हैं वैसे पुण्य नहीं कमा सकते, निगोदी जीव पुण्य नहीं कमा सकता। निगोदी जीव तो मंद कषायी बन जाए मरण के काल में, मंद कषायी बन जाए तो कुछ पुण्य प्रकृतियां ऐसी हैं उसको बंध सकती, जैसे गति कितने हैं? 4 हैं। गति नाम कर्म 4 हैं। आयु कर्म कितने हैं? 4 हैं। आयु कर्म भी 4 हैं। इसमें आयु कर्म में, 4 आयु कर्म में से पुण्य प्रकृति कितनी है? कौन कौन से? मनुष्य आयु पुण्य कर्म है, मनुष्य गति, हाँ देव गति, देवायु पुण्य है, और त्रिरंचायु पुण्य है। देखो त्रिरंचायु भी पुण्य है, ये कैसे? त्रिरंच गति में जाना, हाँ हाँ आपको पकड़ में आ गया है, त्रिरंच आयु पुण्य है, त्रिरंच गति पाप है। आयु पुण्य क्यों? हाँ, जीव किसी भी आयु को लेकर के वहाँ जन्म लेता है तो वहाँ से निकलना नहीं चाहता। जहाँ से निकलना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, वो जिस आयु कर्म के उदय से होता है उसी से पहचान में आती है कि ये पुण्य प्रकृति है। नरक में जन्म हुआ तो जीव आना चाहता है कि आना नहीं चाहता? आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता, वहां अकाल मरण है ही नहीं। जेल में जाकर के पड़ गया है तो जेल में जितनी शिक्षा मिल गई है उतना भोग करके ही आना पड़ेगा। त्रियंची गति ऐसा नहीं है, जब कभी भी मरण कर सकता है। अकाल मरण है कर्म भूमि की अपेक्षा से, भोग भूमि में अकाल मरण नहीं है। तो कर्म भूमि में रहने वाला त्रियंच कोई मार रहा है तो बचता है, वो भागता है वहां से, मरना नहीं चाहता। इसलिए इसको क्या कहा, आयु कर्म को त्रियंच आयु कर्म पुण्य प्रकृति है। और इस आयु कर्म के उदय में जीव संयम आदि भी धारण कर सकता है, संयम आदि भी धारण कर सकता है। इसलिए भी ये आयु कर्म वैसे ठीक है अन्य कर्म की अपेक्षा। तो तीन आयु कर्म पुण्य हो गए। निगोद से आने वाला जीव मनुष्य आयु को बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता है। तिरंच आयु को बांध सकता है, देवायु को नहीं बांध सकता है। क्यों, क्या हो गया? तो सम्यक तो चाहिए, ऐसा थोड़ी है। मिथ्या दृष्टि जीव भी तिरंच गति से मनुष्य गति में आ सकता है। हाँ? संयम। निगोदी जीव देवायु को बांध नहीं पा रहा है, क्यों, किस कारण से? गाढ़ा पुण्य। कितना गाढ़ा परसेंटेज? देखो, एकेंद्रीय जीव देव गति भी नहीं जाते और नरक गति में भी नहीं जाते। नरक गति में और देव गति में जन्म लेने के लिए हम लोगों को कम से कम 5 इंद्रियां तो मिलना ही चाहिए। 5 इंद्रियों से पुण्य करो या पाप करो, पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक। तो उसके पास साधन कम है पुण्य करने के या पाप करने के, तो भरपूर पुण्य कमा नहीं सकता और भरपूर पाप भी उसके द्वारा हो नहीं सकता। इसलिए समझ में गए ना? हाँ, इसलिए देव गति में वो जन्म नहीं लेता, इसलिए नरक गति में वह जन्म नहीं ले सकता। संगी पंचेंद्री जीव चारों गति में जाता है, त्रिरंच जाता है कि नहीं जाता? असंगी पंचेंद्री जीव भी चारों गति में जाता है, जिसको 5 इंद्रियां हैं और मन नहीं है। मन रहित 5 इंद्रियों में इंद्रियों से भी नरक गति में या देव गति में जाने लायक पुण्य पाप दोनों बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय जीव ऐसा पुण्य और पाप अधिक से अधिक भी कमा लेगा, अधिक से अधिक पुण्य भी कमा ले या पाप भी कमा ले, तो वह अधिक से अधिक नरक में जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा? पहले नरक तक ही जा सकता है। कोई भी एक भी असंगी पंचेंद्रिय जीव आज तक दूसरे नरक में पैदा नहीं हुआ, अनादिकाल से दूसरे नरक में पैदा नहीं हुआ, पहले नरक में ही पैदा हुआ। और देव गति में जन्म लिया तो एक भी असंगी पंचेंद्रिय जीव वैमानिक देव देव बनकर वैमानिकों में जन्म नहीं लिया, भवनत्रिक में गया, भवनत्रिक में गया। और संगी पंचेंद्रिय जीव उसके पास भवनत्रिक में भी जाने की शक्ति है और वैमानिक देवों में भी जाकर जन्म लेने की शक्ति है। और सातों नरकों में भी जाने की शक्ति, मनुष्य गति में भी आ सकता है और नरक गति में भी जा सकता है, चारों गति में जा सकता है। संघी पंचेंद्री हो तो, संघी पंचेंद्री हो तो पाप करना इतना आसान है, इतना आसान है, शरीर को कहीं लेकर दौड़ना नहीं पड़ता। एक जगह बैठ जाओ और चिंतन करते रहो, ये दुनिया को कब नष्ट करूं, ये कब नष्ट हो जाए, आर्त रौद्र ध्यान करते रहो। किसी एक को भी मारने की जरूरत नहीं, पाप करने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे विचार करो। और वज्रषभ नाराज सहनन को लेकर के ऐसा विचार चल रहा है तो हाय फाय नरक मिलेगा। सातवा हाय फाय, जहां पर हाय फाय दुख है वो हाय फाय नरक है, जहां पर हाय फाय सुख है वो हाय फाय स्वर्ग है। तो नरक में जाने के लिए जैसे बैठे बैठे हम पाप कर सकते हैं और एक भी जीव नहीं मरा हमसे फिर भी पाप हुआ, ये भावों का खेल है क्या? नहीं। और ये भाव हमेशा रहते हैं, चाहे एकेंद्री में रहे, द्विइंद्री बने, चतुरेंद्री बने, पंचेंद्री बने, भाव तो सब जगह हैं। परिणाम आत्मा को छोड़कर भाव नहीं रहते, किंतु इन भावों को भाने के लिए एक शक्ति और मिल गई, मनोबल। तो मनोबल के कारण से भावों में एक हाई फाई शक्ति इसमें भी स्ट्रांग हो जाता है, परिणाम स्ट्रांग होते हैं। इंद्रियां जितनी जितनी मिलती जाती हैं वैसे वैसे भावों में शक्ति आती है पाप करने की। इंद्रिय द्वार पांच हैं, मन एक है, पांच इंद्रिय द्वारों से भी पापाश्रव होने लगा और एक मन से भी पापाश्रव हो गया, तो ये संघी पंचेंद्रिय जीव सातवें नरक तक जा सकता है और स्वर्गों में सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। तो सर्वार्थ सिद्धि में जाने के लिए ऐसा चलेगा क्या किसी एक जगह बैठ गए और शुभ परिणाम करने लगे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कोई गृहस्थ ऐसा बैठ करके जीवन भर अशुभ परिणाम किया ही नहीं और एक जगह बैठ करके सबका कल्याण हो, सब एक भी जीव मरे नहीं, हमसे मरे नहीं, और एक भी जीव को उसने नहीं मारा लेकिन गृहस्थ है, तो हाय फाय स्वर्ग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नरक तो मिल सकता है हाय फाय नरक तो मिल सकता है, हाय फाय स्वर्ग नहीं मिल सकेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? संयम नहीं है। बैठ करके अच्छी भावना भाव इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु संयम के साथ भावना को भाएंगे तो फिर एक शक्ति तैयार होती, भावों की परिपूर्णता आती। असंयम के काल में भाव उत्कृष्ट नहीं रहते। जो पुण्य प्रकृति बंधना चाहिए स्ट्रांग, वो संयम के साथ ही बंधेगा। पुण्य प्रकृति जैसे देवायु देव गति, ये पुण्य प्रकृति है कि नहीं? गृहस्थ देवायु को बांध लेता है और मुनि न बन करके गृहस्थ ही रह करके हाय फाय शुभ परिणामों को स्टैंडर्ड बना लेता है। कितना स्टैंडर्ड बनाने वाला है? अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जाने का बना लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। तो असंयमी जीव संयम के बिना कितना भी शुभ परिणाम कर ले। अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया है मान लो, बहुत जबरदस्त पुण्य प्रकृति है वो और गृहस्थ है और उसने संयम धारण नहीं किया, और तीर्थंकर प्रकृति बांधने योग्य शुभ परिणाम थे तो भी वह कहाँ तक जाएगा? 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जाएगा, और मुनि महाराज तीर्थंकर प्रकृति को बांधा भी नहीं और कुछ भी नहीं, एकमात्र संयम धारण किया है और वज्रवृषभ नारद सनन है, तो वो कहां तक जाएंगे? सर्वार्थ सिद्धि तक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, 16वें स्वर्ग से ऊपर उठने के लिए दिगंबर मुनि बनना ही पड़ता है। 16वें स्वर्ग से आगे निकलना हो तो दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा, और वह मुनि अवस्था दो प्रकार की है, एक द्रव्यलिंग अवस्था और एक भावलिंग अवस्था। भावलिंग अवस्था से रहित केवल द्रव्यलिंग अवस्था यानी बहिरंग परिग्रह 10 को छोड़कर त्याग कर अंतरंग परिग्रह को त्यागा नहीं, सभी चारित्र मोहिनी कषाय का उदय है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन सबका उदय है, मिथ्यात्व का भी उदय है, अंतरंग परिग्रह एक भी नहीं त्यागा 14 में से, लेकिन बहिरंग 10 का त्याग है। तो ये कौन सा लिंग? ये द्रव्य। ऐसे 10 परिग्रह के त्यागी वज्रवृषभ नारद सनधारी मुनि महाराज कहां तक जा सकते हैं? नवग्रह तक जा सकते। कैसे बता दिया? कभी होकर के आए थे क्या? नीचे आ जाते, यानी कि असयम के साथ, भाव असयम है यहां लेकिन द्रव्य से संयम। तो द्रव्य संयम से क्या होता है? द्रव्य संयम से अशुभ परिणाम नहीं होते, परिग्रह की ओर आकर्षण, इन 10 परिग्रहों की ओर आकर्षण भाव, वर्तमान के परिग्रह में तो आकर्षण भाव नहीं रहता, किंतु यही परिग्रह परभव में मिले ये कामना हो सकती है, ये कामना हो सकती है, लेकिन वर्तमान में त्यक्त परिग्रह में जो 10 त्यागा है उसमें तो वो कभी भी वांछा भाव नहीं करेंगे, और इतने मात्र से उनको पुण्याश्रय होकर कहां तक जाते हैं? वो नवग्रह तक जाते हैं। द्रव्य लिंग की अपेक्षा से हम नवे ग्रहविक तक जाने का पुण्याश्रय कर सकते हैं, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, तीव्र पुरुषार्थ, वज्रवृषभ नारद सनन हो तो भी नवे ग्रहविक तक ही जाना पड़ेगा, दूसरा सनन हो तो भी नवे ग्रहविक तक ही जाना पड़ेगा, तीसरा सनन तो वाले तो जाते ही हैं नव ग्रहविक तक, तीसरे सनन वाले, और वज्रवृषभ नारद सनन वाले सर्वार्थ सिद्धि तक जाने की योग्यता रखते हुए भी नव ग्रहविक तक ही चले गए, उससे ज्यादा नहीं जा पाए ऊपर, क्या कारण है? यहां पर भाव असयम होने के कारण से उस पुण्य को गाढ़ा नहीं बना सकते, और आ गया गाढ़ा शब्द, और गाढ़ा बनाओ तो गाढ़ा नहीं बनेगा वो, हाँ पेड़ा नहीं बनेगा, खवा बनेगा, पेड़ा नहीं बनेगा। पेड़ा कब बनेगा? तो भाव संयम को धारण करने के बाद, यानी तपस्या की गर्मी और बढ़ेगी, उस हीट को और पहुंचाएंगे तो वो खवा ही पेड़ा बन जाएगा। संयम चाहिए, दोनों प्रकार के संयम से और वज्रवृषभ नारद सनन से ये दोनों तीनों निमित्त मिलने पर सर्वार्थ सिद्धि तक वो जा सकते। कहां से लेकर? देखो कहां से लेकर? पहले दूसरे स्वर्ग से लेकर, ये कहना चाहिए। किस लिंगी के लिए? हाँ भाव लिंगी के लिए। द्रव्य लिंगी के लिए कहां से लेकर नव ग्रहविक तक जाता है, जा सकता है? नहीं, स्वर्ग से नहीं कहना पड़ेगा, भवनत्रिक से लेकर भवनत्रिक में भी जा सकते हैं, द्रविलिंगी भवनत्रिक में भी जा सकते हैं ना, क्योंकि सम्यक तो से रहित हैं, द्रविलिंगी सम्यक तो से रहित हैं। द्रविलिंगी में दो प्रकार समझना, तीन प्रकार समझना चाहिए। एक द्रविलिंगी वो जो भावलिंग से तो रहित हैं किंतु सम्यक तो से सहित हैं और उनका पंचम गुण स्थान, और एक द्रविलिंगी वो हैं जो चौथे गुण स्थान में हैं, सम्यक दर्शन से सहित हैं, भाव संयम से रहित हैं। भाव संयम यानी तीन चौकड़ी का अभाव होना चाहिए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, इन तीन कषाय चतुष्क का अभाव होने पर ही भावलिंग प्रकट होता है, अन्यथा इसमें से एक भी उदय में रहेगा तो द्रविलिंग रहेगा, द्रविलिंग रहेगा। तो द्रविलिंग तीन प्रकार का हो गया ना, प्रत्याख्यान का उदय वाला द्रविलिंग, अप्रत्याख्यान का उदय वाला द्रविलिंग, और अनंतानु बंधी कषाय के उदय वाला द्रविलिंग। जब द्रविलिंग ही केवल होता है तो परिस्थिति ऐसी ही बनती है हमारी, क्या भावना भाते हैं वो, हे इंद्री विषय कषाय मोर्य, छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, धर्म भी चल रहा है, धर्म चल रहा है, धर्म भी कर रहे हैं। कैसा धर्म? बाह्य त्याग वाला धर्म, लेकिन ये परिपूर्ण धर्म नहीं है। जब तक द्रव्य से भाव का संयोजना नहीं होगी, द्रव्य से भाव का संयोग नहीं मिलेगा, तब तक परिपूर्णता नहीं कहलाती। फिर भी 50% तो ठीक है, अब 50 उसमें मिलाना पड़ेगा, पर मिला नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिला पा रहे हैं? क्योंकि जिसको त्यागा है उससे तो मोह नहीं है, किंतु उसको पाने की भावना जग सकती है। ऐसा निदान बंद आदि के परिणाम हो गए तो भावना तो हो गई परिग्रह की, इंद्रिय विषयों के प्रति परिणाम हो गए। अब ये परिणाम नीचे गिरा देते हैं जीव को, किस गुण स्थान से? छठे सातवें से। गुण स्थान को चढ़ने के लिए जो परिणाम चाहिए उसके अपोजिट परिणाम यदि करेंगे तो हम क्रमशः नीचे भी आ सकते हैं। जैसे चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में जाने के लिए कौन से परिणाम करते हैं? हमको पंच पापों में से एक देश त्याग करना है, तो आसक्ति कम हो जाती है परिग्रह के प्रति, तो एक देश त्याग करते हैं और देश संयम धारण कर लेते हैं। तो ये कौन से परिणाम हो गए? एक देश त्याग के परिणाम हो गए, इसलिए पंचम गुणस्थान बन गया। और यह भी अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के क्षयोपशम के साथ परिणाम बने तो ठीक है, और क्षयोपशम नहीं है तो केवल एक देश त्याग के भाव वैसे भी आ सकते हैं, और चतुर्थ गुण स्थान में रह करके पंचम गुण स्थान का बाह्याचरण बाह्य त्याग ग्रहण करके वह रह सकता है। यह भी एक प्रकार का द्रव्यलिंग माना जाता है जो पंचम गुण स्थान के लायक है, ये बाह्यलिंग है। इस बाह्यलिंग के साथ भावलिंग को जोड़ना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसको? अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए? अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभक्षम हो तो कैसे हो, क्या परिणाम करे, क्या पुरुषार्थ करे, कैसे भाव रखे? संयमा संयम भाव तो है, संयमा संयम भाव है। एक देश पंच पापों का त्याग, पंच पाप बाहर के या अंदर के? ये पंच पाप, ये 10 पाप हैं, बाहर के 5 और अंदर के 5, ऐसे भाव के 5 और द्रव्य के 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये बाह्य के 5 हैं। और इन बाह्य के 5 पापों को करने के लिए भाव भी चाहिए। तो ये भाव आने के लिए अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय भी चाहिए। तो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में पंच पापों को करने के पूर्ण भाव होते हैं अप्रत्याख्यान। लेकिन प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में पूर्ण पंच पाप करने के भाव नहीं होते, क्योंकि जितना उसने त्यागा है उतना त्यागा है, उसमें परिणाम नहीं करेगा। पूरा ही कर लूं पाप, ऐसा परिणाम नहीं होगा। तो अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो इसके लिए क्या करें? तो हमारे भावों में संकल्प जगना चाहिए। कैसा? मैं परमार्थ की सिद्धि के लिए, यानी भाव व्रतों की उत्पत्ति के लिए ये द्रव्य व्रत स्वीकार करता हूं, इस संकल्प के साथ। यदि वह बाह्य पंच पापों को एक देश त्याग करता है तो निश्चित रूप से उसको पंचम गुणस्थान की प्राप्ति भी हो जाता है। समझ में आ गए ना? पंचम गुणस्थान यानी प्रतिमाधारी बनना, शुल्लक बनना, ऐलक बनना, आरिका बनना, या तो ये सभी पंचम गुणस्थान के परिणाम। प्रतिमाधारी को ही पंचम गुणस्थान होता है, या शुल्लक ऐलक इत्यादि, इनको 11 सभी प्रतिमाएं होती हैं, 11 सभी। और आरिका को औपचारिक महाव्रत होते हैं, परंतु पूर्ण उनका पालन नहीं हो सकता, इसलिए वस्त्र आदि परिग्रह रहने से पंच पाप में से हिंसा पाप तो छूटती नहीं, वस्त्र परिग्रह, परिग्रह पाप तो छूटता नहीं। तो इसके कारण से पंचम गुणस्थान ही प्राप्त होता है, छठा गुणस्थान नहीं होता। जब तक कोई साधक पाप को पूर्ण नहीं त्यागता, पंच पापों में सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह माना है, वो सभी पापों का मूल है, सभी पापों का मूल परिग्रह है, वस्त्र परिग्रह है, वस्त्र भी पाप है, वस्त्र को पहनना पुण्य नहीं है, पाप है। देखो, वस्त्र पहनना पाप बताया, और अपन वस्त्र पहनते समय जरा भी उसमें डिस्टर्ब हो गया, विकल्प होता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक है, ये क्यों क्यों लाए, ऐसा था, वैसा था, वो लाना था, हमको नहीं, ये पसंद नहीं है। वस्त्र पहनना पाप है, फिर भी पाप को पहनने के लिए भी पाप के परिणाम होते, यानी अच्छी क्वालिटी वाला पाप चाहिए इनको पहनने के लिए भी क्वालिटी वाला पाप चाहिए। वस्त्र पाप है कि नहीं? क्वालिटी वाला वस्त्र हो तो क्वालिटी वाला पाप नहीं क्या? कैसे परिणाम होते हैं? ये कभी ख्याल में आया था कि इस प्रकार के परिणाम में भी पाप बुद्धि होती है और इससे पाप का बंध होता है? और उसी व्यक्ति से पूछो क्या आप नरक जाना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। और फिर वस्त्र को क्यों मांग रहे हैं, क्या बात है, अच्छा वस्त्र तो मांग रहा हूं, इसमें कौन सी गलती है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पहनता हूं, स्वच्छ रहता हूं, बढ़िया दिखता हूं सबको, लेकिन पाप तो पाप है कि नहीं, वस्त्र भी पाप है। ये कल्पना में नहीं आती, छोटी छोटी बातें कल्पना में नहीं आती। अब तो आ जाएं, ये अच्छा है ना। जब आप वस्त्र पहनते हैं उस समय ये ध्यान में आना चाहिए, मैं पाप ही पहन रहा हूं, या ऐसा कभी आया, ये एक दिन भी नहीं आया, मैं वस्त्र पहन रहा हूं तो पाप को ही पहन रहा हूं, ऐसा पाप को पहन रहा हूं जो पांच पापों में सबसे बड़ा पाप है, उसको पहन रहा हूं। बाह्य परिग्रह है ऐसा भावना, तो भाव अब एकदम ही तैयार हो गए। एकदम ही तैयार हो गए। अब देखो, इसलिए तो कहते हैं जब तक सत्संग नहीं करते, सदगुरुओं का उपदेश, जिनवाणी का स्वाध्याय, ये सत्संग है। सत्संग जब तक हम नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी कल्पना में नहीं आती। और छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, और उनसे हमारा पाप कर्म का हमको बंद होता रहता है। उससे हम बच सकते हैं कि नहीं, यही तो जीवन जीने की कला है। कषाय कैसे छोड़े, ये प्रश्न उठता है, कैसे छोड़े, कब कब छूटता है, कैसे कैसे छूटता है। अपनी चर्या में कषाय छूटती है, लेकिन वो कैसे छूटती है, क्या भाव करना चाहिए, ये मालूम नहीं है। तो वस्त्र पहनते समय आपको ऐसे अगर परिणाम आते हैं कि मैं पाप पहन रहा हूं, ये योग्य नहीं है, इसको मुझे त्यागना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, छोड़ नहीं पा रहा हूं इसलिए पहन रहा हूं, लेकिन है तो पाप, ये पाप कह करके आप ग्रहण कर रहे हैं, तो कषाय मंद है, और मंद कषाय के काल में पापाश्रव नहीं होता। पाप कार्य में प्रवृत्त होते हुए भी पुण्याश्रव हो रहा है, क्योंकि कषाय मंद हो गई, तो शुभ भाव हो गए। ये पाप है कहना, ये शुभ भाव है, लेकिन उसमें आनंद आ जाना, ये हिंसा कौन सा, परिग्रहानंद, परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। वस्त्र पहन रहे हैं, हमको बहुत आनंद आ रहा है, क्यों, जैसा चाहिए था उससे बढ़िया मिल गया है, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा वस्त्र मिलेगा बाजार में, लेकिन हमारे घर में तो ये खरीदने के लिए चले गए और इतना बढ़िया वस्त्र मिल गया कि हमारे मन से बाहर का है, अच्छा मिल गया, आनंद आ गया, अच्छे वस्त्र को देखकर, क्वालिटी के वस्त्र को देखकर के आनंद आ गया। ये कौन सा रौद्र ध्यान है, क्या धर्म ध्यान है, हाँ हिंसा नहीं, परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है, परिग्रहानंद, परिग्रह मिलने पर उसमें आनंद मनाना, जैसे वो वस्त्र मिल गया तो कैसी अनुभूति होती है, उसको पहनने के बाद जैसे दूसरा ही जन्म हुआ हो, झक झक दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितना आनंद होता है नया वस्त्र को पहन करके। ये कौन सा रौद्र ध्यान बोलो, हाँ, पहनते समय वो नया वस्त्र पहनते समय इतना भी ध्यान में आ गया कि ये नया वस्त्र है, नया पाप है और क्वालिटी वाला पाप है, और मैं क्वालिटी वाले पाप को पहन रहा हूं, इस प्रकार के भावों को तो धर्म ध्यान कहते हैं, और उस प्रकार के भावों को रौद्र ध्यान कहते हैं। रौद्र ध्यान नरकायु, त्रिंच आयु, त्रिंच गति, नरक गति के बंद का कारण है। और जीवन जीने की कला में इतनी ही सावधान हो गए आप कि ये बड़ा पाप है, मुझे पहनना पड़ रहा है, आज न कल इसको छोड़ के ही रहूंगा, कम ही करूंगा, इसको पहनना न पड़े ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, करके ही बताऊंगा, इस प्रकार के परिणाम करो बैठे बैठे, पहनते पहनते करो, तो ये धर्म ध्यान कहलाएगा, धर्म ध्यान। और ऐसा धर्म ध्यान कौन कर सकता है? सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। चौथे गुण स्थान से नीचे धर्म ध्यान है ही नहीं, धर्म ध्यान तो सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है, और सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे परिणाम होते हैं। पाप से भय उत्पन्न होता है, वस्त्र पहन रहा है तो कहता है कि क्या कर रहा हूं, ऐसा लगता है, और लगना चाहिए, छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, दसों परिग्रह हैं, लेकिन उनका उपयोग करते समय उसके परिणाम ऐसे हैं, संसार शरीर भोग निर्विन्न, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति के जो परिणाम हैं वे धर्म ध्यान के प्रतीक हैं, द्योतक है। हाँ, कलेवर तो है ही, ये भी चिंतन करना चाहिए, ये भी एक पॉइंट उसमें जोड़ना चाहिए कि देखो मैं पेन रहा हूं, ये तो सभी पापों में बड़ा तो है, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी पाप करने से ही हुई है। वस्त्र निर्माण करते समय क्या पाप नहीं हुआ? और उस पाप से उत्पन्न उस वस्तु को हम ग्रहण करते हैं तो क्या हम अनुमोदक नहीं हैं? अनुमोदक, इसलिए तो पापास्त्र होता है। और ये पापास्त्र हो रहा है, पाप बंद हो रहा है, ये कोई दिखता है क्या? पाप कर्मों का आश्रय और बंद जो हुआ वस्त्र आदि का उपयोग करते समय, ये दिखा क्या? दिखा नहीं। पाप का बंद होते समय पाप का वो नहीं दिखता, पाप करते समय पाप का कार्य दिखता है, लेकिन पाप करते समय परिणाम की ओर हमारा ध्यान जाए तो पाप का कार्य दिखता है, पापाश्रव जो हो रहा है वो नहीं दिखता। हाँ, पाप का फल दिखता है, लेकिन पाप का कार्य और पाप का फल ये दोनों दिखते हैं, लेकिन पापाश्रव जो होता है वो नहीं दिखता। हाँ, वो दिख जाए तो फिर कोई पाप कर ही नहीं सकता। पाप बंद होता हुआ पाप दिख जाए तो पाप कोई नहीं करेगा, लेकिन ऐसा एकांत भी नहीं, ध्यान रखना, पाप दिख जाए तो पाप नहीं करता ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये शराब है, ये शराब है, नशा, हाँ नशा चढ़ता है इससे, ये समझता हुआ भी शराबी शराब पीता है क्या? नहीं, ये गलत है कह करके भी शराब पीता है क्या? नहीं, सिगरेट पर पॉकेट पर ही लिखा रहता है ये डेंजर है ऐसा, फिर भी सिगरेट पीता है कि नहीं? तो पीने वाले तो पिएंगे ही। पाप कर्म का बंद होता हुआ दिख जाए तो भी पाप करेंगे, ये मोह की महिमा है, यही मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म कैसे घुमाता है देखो जीव को, हे जीव तुम अपने भावों को मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, करो, करना ही चाहिए, अनादि से मेरे साथ हैं और मुझे छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, दोनों हैं वहां। केवली कितने प्रकार के? सात प्रकार के। सामान्य केवली जिनके पंच कल्याणक नहीं होते हैं उनको सामान्य केवली कहते हैं, जैसे बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान तीर्थंकर थे क्या? नहीं थे। क्यों नहीं थे? हाँ, उनके पांच कल्याणक नहीं हुए थे इसलिए तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर प्रकृति का पूर्व भव में बंद करके नहीं आए थे इसलिए तीर्थंकर नहीं थे। जो बंद करके आते हैं, बांध करके आते हैं तीर्थंकर प्रकृति को, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ये अंतकृत केवली किसको कहते हैं? उपसर्ग होने पर, केवल ज्ञान प्रकट होने पर शीघ्र निर्वाण प्राप्त करने वाले। उपसर्ग हुआ उसी समय केवल ज्ञान भी हुआ और उसी समय मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। उपसर्ग के साथ केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों हो। हाँ, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में ही अंतकृत केवली कहला कर वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो उपसर्ग के काल में ही इनको केवल ज्ञान होता है, नियम है। यानी उपसर्ग के निमित्त से ही जिनको केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के साथ मोक्ष भी हुआ उनको अंतकृत केवली कहते हैं। ऐसे कौन हुए हैं? सुकौशल मुनि महाराज, जिन पर शेर ने, सिवनी ने आकर के आक्रमण किया और उनके शरीर को खा डाला। खाते समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। पीरियड, अंतर मुहूर्त में, सब अंतर मुहूर्त में काम हो जाता है। उपसर्ग के काल में मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति, अंतर मुहूर्त में ही सब कुछ हो जाता है। उपसर्ग केवली, देखो ये उपसर्ग केवली अलग हैं और अंतकृत केवली अलग हैं। ये उपसर्ग केवली का मतलब उपसर्ग सहन कर जिनको केवल ज्ञान हुआ हो, ऐसे देशभूषण और कुलभूषण मुनि महाराज। कुंतलगिरी से मोक्ष गए हैं ना, वो कौन से केवली? वो उपसर्ग केवली। और सुकौशल मुनि महाराज कौन सी केवली? अंतकृत केवली। उसी समय वो मोक्ष गए, लेकिन ये मोक्ष उसी समय नहीं गए। केवल ज्ञान उपसर्ग के टाइम में केवल ज्ञान तो हो गया, अरहंत अवस्था में आ गए, लेकिन आयु अधिक थी ये बचे रहे। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तो उपसर्ग होता नहीं है, मुनि अवस्था में ही उपसर्ग होता है। केवल ज्ञान के पश्चात उपसर्ग नहीं होता, किंतु उस मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ और होते समय केवल ज्ञान हो गया लेकिन मोक्ष नहीं गए, तो वो कौन से केवली? वो उपसर्ग केवली। मोक्ष चले गए तो अंतर्कृत केवली उसी समय, और मोक्ष नहीं गए तो उपसर्ग केवली। उपसर्ग के निमित्त से केवल ज्ञान हुआ। सुकमाल मुनि अंतकृत केवली, पांडव अंतकृत केवली। एक तीर्थ में दस दस होते हैं ऐसा आता है, उन दस को ही मानना चाहिए अंतकृत केवली। दस ही ऐसे होते हैं, इससे ज्यादा होते भी नहीं है, दस ही होते हैं। और जिस तीर्थ में, यानी पांडव किस तीर्थ में हुए? नेमिनाथ भगवान के तीर्थ काल में हुए। तो पांडवों को मोक्ष उसी टाइम में हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ? तीनों को मोक्ष उसी काल में हुआ क्या नहीं हुआ? यदि आप कहते हैं कि उसी काल में हुआ तो अंतकृत केवली समझना, अगर वो बच जाते तो अंतकृत केवली नहीं कहलाते, वो उपसर्ग केवली की कोटि में आते। गजकुमार अंतकृत केवली, मोक्ष भी गए। और तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हुआ ना, हाँ, उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? किस भगवान को? पार्श्वनाथ भगवान को। तो वो कौन से केवली? वो तीर्थंकर केवली भी हैं और उपसर्ग केवली भी हैं, उपसर्ग केवली भी कहलाए, अंतकृत केवली नहीं हो सकते। तो ये पांचवे में मूक केवली, देखो एक से एक क्वालिटी अलग है, केवली हैं और मूक हैं। मूक का मतलब ये मत समझो कि जन्म से मूक हो, मूक थे और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। मूक केवली का तात्पर्य, पहले तो बोलते थे गृहस्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में भी बोलते थे, किंतु केवल ज्ञान के बाद बिल्कुल नहीं बोले, उपदेश ही नहीं दिया, एक बार भी उपदेश नहीं हुआ, तो उनको क्या कहेंगे? मूक केवली। मूक केवली उपदेश नहीं दिया और ऐसे ही मोक्ष गए, ये मूक केवली। केवल ज्ञान होने के बाद भी वाणी नहीं खिरी खिरती, केवल ज्ञान उदाहरण, वो बहुत शीघ्र मोक्ष गए वो, यानी गंधकोटि की रचना तो होती है उनकी, जिनके आयु अधिक हो केवल ज्ञान के बाद, उनकी गंधकोटि की रचना होती है, विहार होता है, सब होता है, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। तो ऐसे कौन है? वो तो मोक्ष गए थे, उपसर्ग केवली भी नहीं, सामान्य केवली में आएंगे वो, जिनके पांच कल्याणक नहीं होते और मोक्ष चले जाते हैं, वो सामान्य केवली हैं। बाहुबली भगवान सामान्य केवली, महावीर भगवान तीर्थंकर केवली, 24 तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर तीर्थंकर केवली। मूक केवली के लिए उदाहरण कौन है? ये शिवभूति मुनि की कथा थी। शिवभूति मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने उपदेश दिया है, ऐसा कोई कथन नहीं मिलता। केवल ज्ञान हो गया पर उपदेश उन्होंने नहीं दिया होगा तो मूक केवली। बाहुबली भगवान का उपदेश हुआ है, गंधकोटि की रचना के साथ विहार भी हुआ है, उपदेश भी दिया है। अनुभद्ध केवली, मूक केवली नहीं है बाहुबली भगवान, कामदेव हैं, मूक केवली कैसे हो सकते हैं? कामदेव महापुरुषों में आते हैं, 24 कामदेव होते हैं, पूरे 24 तीर्थंकरों के पीरियड में उतने लंबे, एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम, 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम के काल में 24 कामदेव होते हैं, उसमें 24 कामदेवों में प्रथम कामदेव बाहुबली भगवान, और हनुमान भी कामदेव हैं, और नेमिनाथ भगवान के तीर्थ में जो गिरनार से मोक्ष गए हैं ना, प्रद्युम्न कुमार, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार, ये भी कामदेव हैं, कामदेव। अनुभद्ध केवली, अनुभद्ध केवली कौन? एक को मोक्ष होने पर उसी दिन जिसको केवल ज्ञान हो वो अनुभद्ध केवली कहलाते हैं। जैसे गौतम गणधर, देखो महावीर भगवान को सुबह सुबह प्रातः काल में उषा वेला में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और उसी दिन, दिनों का अंतर नहीं पड़ा, उसी दिन शाम को दिन डूबते समय केवल ज्ञान प्राप्त किया उनके शिष्य गौतम गणधर ने। तो ये कौन से केवली? अनुबद्ध केवली। उसी दिन प्राप्त किया तो अनुबद्ध केवली, और छोड़ करके किया अननुबद्ध केवली। एक इसमें लिया नहीं उसको, अनुबद्ध केवली में ही इनको शामिल करना चाहिए। उसमें दो भेद हैं, अनुबद्ध केवली में दो भेद हैं, अनुबद्ध केवली अननुबद्ध केवली। जैसे कुंडल पुरुष एक केवली मोक्ष गए हैं जिनका नाम श्रीधर केवली, श्रीधर केवली अननुबद्ध केवली, यानी उसी दिन जिस दिन उनके पहले जो केवल ज्ञान प्राप्त किए थे और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए, उसी दिन इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, बाद में हुआ। उनके मोक्ष जाने के बाद इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो ये अननुबद्ध केवली। हाँ, कितने दिन से अब उनसे कोई संपर्क नहीं है हमारा हाँ, हो सकता है ऐसा। नोट, नोट में क्या लिखा है, मूल शरीर को छोड़े बिना क्या, हाँ एक और लगे क्या, समुद्रघात केवली, समुद्रघात करके निर्वाण प्राप्त करने वाले केवली समुद्रघात केवली कहलाते हैं। जिससे पता चलता है समुद्रघात सभी को हो ये नियम नहीं है। जिनके कर्म समान रहते हैं, आयु कर्म के बराबर ही सभी कर्म हो, तो उनको समुद्रघात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समुद्रघात वही करते हैं जिनको आयु कर्म से ज्यादा स्थिति बंद वाले कर्म रहते हैं, उनको समुद्घात करना पड़ता है, समुद्घात केवली। नोट है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के कुछ प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। क्या कहलाता है समुद्घात? मूल शरीर, ये शरीर, और फिर इस शरीर को आत्मा तो छोड़ करके बाहर नहीं होती, आत्मा तो इसी में रहेगी, लेकिन आत्मा के प्रदेशों को बाहर धीरे धीरे निकालेंगे, दंडाकार करेंगे, खंभ के आकार से, जैसे ये खंभा है ऐसे दंडाकार गोल लंबा खंभाकार करेंगे, फिर कपाट आकार करेंगे, दंड कवाट, प्रतर इसको फैलाएंगे, लोक पूरन, लोक तीन लोक के बराबर अपने आत्म प्रदेशों को बड़ा बनाएंगे। मूल शरीर को छोड़े नहीं, आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में भी हैं, लेकिन आत्मा को उसको विस्तारित कर रहे हैं। संकोच और विस्तार स्वभाव वाला आत्मा है, आत्मा के प्रदेश फैल भी सकते हैं और संकुचित भी हो सकते हैं, जैसे रबर जैसे, संकोच विस्तार वाला स्वभाव वाला आत्मा है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों को पहले बाहर निकालना, दंडाकार, कवाटाकार, प्रतराकार, लोकपूर्णाकार, फिर लोकपूर्ण से प्रतर में आएंगे, फिर कवाट में आएंगे, फिर दंडाकार बनाएंगे, फिर मूल शरीर में समाहित होंगे। ऐसा होता है मोक्ष जाने से पहले, ये अद्भुत है ना, तीन लोक के बराबर अपनी आत्मा को बड़ा बनाना, ये क्या सामान्य बात है? हाँ, आयु कर्म जो होता है ना, उनका शेष आयु कर्म जितना बचा है उसके बराबर ही सभी कर्मों को करने के लिए, देखो बाकी कर्म बड़े हैं, आयु कर्म छोटा है, तो बड़े को छोटा बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए, क्योंकि आयु कर्म समाप्त होते ही सभी कर्म समाप्त होने पर ही मोक्ष मिलेगा, आयु कर्म समाप्त हो गया और अन्य कर्म बच गए, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा न हो इसलिए करते, करना ही पड़ता है। आयु कर्म की स्थिति कम हो और शेष के ज्यादा हो तो उनको बराबर बनाने के लिए ही किया जाता है, और कोई उद्देश्य नहीं। अघाती कर्म, अघाती कर्म तो बचे हैं उनके पास, केवली के पास कौन से कर्म हैं? अघाती, अघाती कर्मों को ही केवल वो बनाने के लिए समुद्घात है, घाती कर्मों के उसके लिए समुद्घात नहीं है, अघाती कर्मों को समान बनाने के लिए। तो ये समुद्घात कहलाता है, समुद्घात करने की जो प्रक्रिया है वो शास्त्रों में चर्चा है, बारीक चर्चा, वहाँ से जब पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। अभी संक्षिप्त में बता दिया, समुद्घात कहते ही आपको इतना ध्यान रहेगा हाँ महाराज जी ने बताया था और ये पढ़ने में आ गया, वहाँ विस्तार से पढ़ लेना। समय हो गया जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।